Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Jhadu leta karke rakhne par jhagda ho to kya jhadu ko ghar se bahar kar doge? Ye bhi to sambhav nahi. Manyata hai, maan liya, ek laukik dharm hai. एक माता जी थी, उन्होंने सोचा कि जब बहू आएगी ना, मैं उसको बेटी की तरह मानूंगी. लोग बोलते हैं सास बहू की कभी नहीं बनती. अच्छा, सास बहू की क्यों नहीं बनती, अभी तक हमको भी नहीं मालूम था. इस बार बड़ा पुराण में मालूम पड़ा. बड़ा पुराण में एक ऋषि ने श्राप दे दिया. ऋषि क्या था, एक ब्याध था. ब्याध उसकी बेटी थी, ससुराल गई. अब देखो, शाम की कथा हम सवेरे आपको क्यों सुना, ये तो फालतू की बात हो जाएगी. संक्षेप में सुन लो. ससुराल गई और वहां पर उसके सास ने कह दिया, तुम्हें धर्म कर्म का कुछ ज्ञान तो है नहीं, एक ब्याज की बेटी है, तुम्हें क्या पता धर्म किसको बोलते हैं. नई नई शादी हुई थी और तुरंत मायके चली गई वापिस. पिता ने कहा क्या हुआ, बोले ऐसे ऐसे ताने मारते हैं. अब उसके पिताजी आए, बोले अच्छा, मैं तो ब्याध हूं, शिकार करता हूं, लेकिन बाकी अपना धर्म का आचरण तो पूरा करता हूं. अब उनके वहां जब गए तो समधि ने बोला, सास ने बोला था ना बहू को, समधि को तो पता ही नहीं, ये घर की बात है. कई बार सास बहू में झगड़ा होता है तो ससुर और बेटे को पता नहीं होता है, तो समधि को तो पता था नहीं. और ये जब आए तो बड़ा स्वागत किया, आओ जी कैसे आगमन हुआ. बोले बस ऐसे आए, जब खाने पीने के लिए दिया, गेहूं चावल जो भी दिया होगा, बोले आप पका के खाओगे कि मैं पका. बोले आपके घर का हमें कुछ खाना ही नहीं, इन सब में जीव है, ये सब मारे जाएंगे, इनकी हत्या होगी, ऐसा हत्या वाला काम हमें नहीं करना है. तब उसको समझ में आया कि इस तरह से पहले तो आके सीधे खा लिया था, अब इतने बहाने क्यों कर रहा है. बोले हम तो एक शिकार करते हैं, उसके बाद मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं, अपने आश्रम वर्ण के अनुसार धर्म का आचरण करता हूं, लेकिन आपकी जो धर्मपत्नी है, जो समधिन जी है, मेरी बेटी से ऐसा कहा. बोले कोई बात नहीं, गलती से बोल दिया, अब आगे नहीं बोलेंगे. तो उन्होंने कहा जाओ, मैं आज के बाद बोलता हूं, न कभी सास की बहू से बनेगी, न बहू की कभी सास से बनेगी. और वो आज तक चला आ रहा है, देख लो. बड़ा पुराण में ये मालूम पड़ा था. तो ऐसे माता जी ने कहा, जब बहू आएगी घर में तो मैं उसके साथ बेटी की तरह व्यवहार करूंगी, कभी उसको ये नहीं मालूम होने देना है कि वो मेरी बहू है. जो मेरी बेटी, वैसे वो भी मेरी बेटी. बड़ा प्रेम चला आपस में. जब वो आई तो कहा, तू मेरी बेटी है, बहू नहीं है. तो उसने भी कहा, आप मेरी मां हो, मैं आपको सास नहीं मानती. बड़ा प्रेम चलता रहा, चलता कई दिनों तक तो निकल गए, ऐसे 6 महीना साल भर. डरते भी थे आपस में, बोलते थे किसी की नजर न लग जाए, हे भगवान जैसा निभ रहा है निभ जाए. एक दिन क्या हुआ, किसी बात पे अनबन हो गई. अब उस अनबन के जब कारण देखा, किस वजह से हुआ होगा, तब पता लगा कि रोज हम झाड़ू लेटा के रखते थे, आज खड़ी करके रख दिया, इसलिए हुआ है. उसने पड़ोस में जाकर के कहा, सुनो जी, हमारे सास बहू में इतना प्रेम था, झाड़ू खड़ी करके रखने से झगड़ा होता है, इसलिए लेटा के रखना, नहीं तो तुम्हारे यहां भी हो सकता है. और वो जो धर्म की परंपरा बनी, करते करते पूरे बंबई में सब जगह धर्म बन गया. तब से सब लोग अपने घर में झाड़ू क्या करने लगे, लेटा के रखने लगे. ये है लौकिक धर्म. लौकिक धर्म शास्त्रीय धर्म के सामने बाधित होता है. शास्त्रीय धर्म का भी आचरण कौन करते हैं, इसके लिए उदाहरण दिया, विद्वद भी सेवितम. विद्वान के द्वारा जो सेवित हो, जो आचरित हो, जो अपने जीवन में आचरण में लावे. चलो सब लोग तो विद्वान हो नहीं सकते, विद्वान ने तो शास्त्र पढ़ा है, इसमें उसको मालूम है. और कोई जरूरी नहीं कि वो बात हमें भी जच जाए. विद्वान होकर के भी व्यक्ति राग द्वेष वाला हो सकता है. तो दूसरा हेतु दे दिया कि राग और द्वेष से रहित होकर के जो आचरण किया जाता है वही धर्म है. विद्वान हो, राग और द्वेष से रहित हो. नित्यम अद्वेष राग भी. अच्छा, राग द्वेष से भी रहित है, विद्वान भी है, लेकिन हमारा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है। हृदय न यो अभ्यनुज्ञातो, जब अपना चित्त स्वीकार कर लेवे उसी को धर्म कहा है। धर्म का जो लक्षण है हम इसके ज्यादा गहराई में अभी नहीं जाएंगे, बस आप समझ लीजिए गुरु जिस शास्त्र के प्रमाण से आपको समझा रहे हैं वह शास्त्र, गुरु का उपदेश और आपका अनुभव, जब ये तीनों एक होंगे वही मोक्ष संपादन करने में सामर्थ्यवान होंगे। आप लोग जग रहे हो ना, सुनते रहना। इह खलु साक्षात परंपराया वा सर्वान जीवान, कह दिया इस लोक में जितने भी जीव मात्र है, मनुष्य का नाम नहीं लिया। इसका मतलब है कि कीट पतंग आदि जो है वो भी कभी कालांतर में जाकर के जब मनुष्य बनेंगे भगवान की कृपा से, और ये जो सत्संग का प्रवाह चल रहा है इसमें कभी उसको गोता लगाने का मौका मिल गया तो वह भी इसको पढ़ करके अपना आत्मकल्याण कर लेगा। देखो मसूदन सरस्वती जी की कितनी लंबी दृष्टि है। हम लोग अपने मुक्ति की बात करते हैं, वास्तव में आचार्य जो होते हैं ना, उनकी जो कृपा, ये ज्ञान की परंपरा बनी हुई है। हम लोगों ने थोड़े सोचा था कि ऐसा जन्म मिलेगा, इस तरह से हम सत्संग करेंगे और ऐसे महापुरुषों की सन्निधि मिलेगी, प्रातः काल होते ही हम अपने आत्मचिंतन में लग जाएंगे, किसी ने सोचा था क्या? आज जो ये हमें प्राप्त है, सुलभ है, जरूर हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म हैं जिसके पुण्य के प्रभाव से हमें आज ऐसा वातावरण मिल रहा है। तो जो भी अभी अन्य योनि में है, जो सत्संग आदि से वंचित है, ऐसे लोगों का भी समुद्धिधिरसु, उनके उद्धार करने की इच्छा से। कैसा उद्धार करना है? दुखे न अत्यंतम बी मुमोच इशु, आत्यंतिक दुख के निवृत्ति की इच्छा रखना, उससे मुक्त कराने की इच्छा से ही ये जो दशश्लोकी लिखी गई है इसके चिंतन मनन पठन आदि से भगवान श्री शंकर, आचार्य शंकर भगवान शब्द से प्रयोग किया, क्योंकि शंकरम लोक शंकरम, उस समय जिन धर्मों का बोलबाला था भगवान ने अवतार लिया, वैदिक मार्ग का उच्छेद हो रहा था, लोग गलत रास्ते पे चल रहे थे, उन सब के कल्याण करने के लिए आचार्य ने अवतार लिया, शंकर ने आचार्य के रूप में अवतार लिया। वायु पुराण में आया है चतुर्भिः सह शिष्येस्तु शंकरो अवतरिष्यति, चार शिष्यों के साथ भगवान अवतार लेंगे, और उनके जो शिष्य हुए वो सब भी पूर्व जन्म के कौन थे, चाहे उसमें आप देख लो पद्मपादाचार्य जी, हस्तमलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य, टोटकाचार्य, चार शिष्य हैं, आप लोगों को नाम मालूम होगा ये सब। व्यास जी आते हैं ब्रह्मसूत्र की रचना करते हैं, क्या बोलते, केशवम बादरायणम, भगवान केशव ही बादरायण बनकर के आते, तभी तो केशव विष्णु और शंकर जी का बड़ा प्रेम है। आचार्य शंकर जितने ग्रंथों की रचना करते तो ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखने के लिए कौन बोलते हैं, व्यास जी। ब्रह्मसूत्र की रचना किया केशव ने तो भाष्य लिखा शंकर जी ने। और ये जब आप पुराण आदि की कथा सुनते हो, सुनना भी चाहिए, या आप मत कहना कि हम वेदांती हैं, पुराण आदि हम नहीं सुनते नहीं पढ़ते, उसके माध्यम से जो भी हमारे मन में संशय रहता है, आप जब वेदांत पढ़ोगे सृष्टि का विचार आता है, सृष्टि क्रम सब तो वेदांत में बताए ही जाते हैं, पांच भूतों की उत्पत्ति, इंद्रिय आदि बनते हैं, शरीर बनते हैं, तो उन इंद्रियों के जो देवता, वे देवता कैसे बनते हैं, सब जब आप पुराण पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा। नहीं तो वेदांत में तो नाम नाम गिना देते हैं भाई, हाथ के देवता ये है, पैर के देवता ये है, नाक के, कान के, लेकिन उन देवताओं को उन इंद्रियों के पीछे देवता बनने का कारण क्या है, ये जब आप पुराण पढ़ोगे तब खुलासा होता है, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो भगवान ने अवतार लिया निर्गुण निराकार रूप परमात्मा, सगुण साकार रूप में शंकर बनते हैं, और मृत्यु लोक में जब प्राणी अज्ञान से दुखी होते हैं उस समय आचार्य के रूप अवतार लेकर के सपूर्वेशमपि गुरु काले न अनवच्छेदात, पतंजलि में लिखा है, पतंजलि ने इसमें योग सूत्र में कि सपूर्वेशमपि गुरु, हमारे गुरु जो अभी हैं उनके भी कोई गुरु हैं, उनके जो गुरु थे उनके भी कोई गुरु हैं। तो ऐसे करते करते अंतिम में ठेठ कहां पहुंच जाएंगे, पूर्वेशमपि, पूर्वजों के जो पूर्वज हैं उनके जो पूर्वज हैं, तो सभी से सबसे पहले वाले जो गुरु हैं आचार्य वो भगवान शंकर हैं। इसलिए जो परंपरा से दीक्षित होना, परंपरा के ही गुरु बनाना इसलिए माना गया। हाँ, वो तो व्यक्ति इस समय है इस काल में, लेकिन जिस परंपरा का निर्वहन चला आ रहा है वो तो अनादि काल से है ना, उसमें कोई भेद नहीं होता, व्यक्ति बदल जाएंगे, लेकिन गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। गुरु को व्यक्ति के रूप में मानोगे नरक में जाना पड़ेगा, कभी आपका कल्याण होगा ही नहीं। और गुरु भी जो गद्दी पर बैठते हैं या जो गुरु हैं उनको ये नहीं मानना चाहिए कि मैं अलग हूं उन गुरुओं से, उनके भी यही मन में भाव रहता है कि उन गुरुओं का मिला हुआ प्रसाद है मेरे पास, जो गुरु से प्रसाद हमने प्राप्त किया वही हमें आगे दूसरे को देना है। हम तो बीच में एक एजेंट कह लो, माध्यम कह लो, निमित्त कह लो। समस्या तो तब आती है जब आप अपने को उन सबसे अलग कर लेते हो, आप स्वयंभू बनने की कोशिश करते हो तो आप भी दुखी, और अंधे नहीं व नियमाना यथा अंधा, जब हमारी स्वयं की आंखें खराब हो गई तो हम दूसरे को भला सड़क कैसे पार करा पाएंगे, मैं तो दुर्घटना का शिकार बनूंगा ही, जो मेरा हाथ पकड़ करके चलेगा वह भी उसका शिकार बनेगा, यह याद रखना चाहिए। तो ये जो हमारे आचार्य शंकर हैं, रोज हम लोग पाठ करते हैं नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, उस क्रम को याद रखिए। तो शंकरम लोक शंकरम और शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, जिन्होंने सूत्र और भाष्य सूत्र किया व्यास जी ने, भाष्य किया शंकराचार्य जी ने, तो सूत्र भाष्य कृतौ, ऐसे जो ये दोनों करने वाले उनको वंदे, उनकी वंदना करते हैं। सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो, सूत्र भाष्य कृतो भगवंतो पुनः पुनः वंदे, उनकी हम बार बार वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। सूत्र भाष्य कृतो भगवंतो पुनः पुनः वंदे, अन्वय ऐसा होगा भगवंतो पुनः पुनः, क्यों ईश्वरो गुरु आत्मा इति, ईश्वर गुरु और अपने आत्मा स्वयं हम, तीनों में कोई भेद नहीं है। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेद, मूर्ति के भेद से विभागिने अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन है कैसे, व्योमवद व्याप्त देहाय, जैसे वह आकाश जो हमारे शरीर में व्याप्त है, तो ये नहीं कि यहां के आकाश अलग है नीचे का आकाश अलग है, जैसे ये उस उबड़ खाबड़ वाले शरीर में, शरीर तो हम लोगों का उबड़ खाबड़ ही है ना, उबड़ खाबड़ वाले शरीर में रहने वाला जो आकाश है वो सम रूप से सर्वत्र जैसे व्याप्त रहता है, वैसे वह परमात्मा मूर्ति भेद से मैं अलग दिखता हूं, ईश्वर अलग दिखते हैं, गुरु अलग दिखते हैं, लेकिन सबके अंदर वह जो है एक समान व्याप्त है। व्योमवद व्याप्त देहाय, ऐसे दक्षिणामूर्तये नमः, दक्षिणामूर्ति भगवान जो गुरु है उनको नमस्कार करते हैं, दक्षिणामूर्ति भी वही है, भगवान शंकर के अवतार है वो, उनको तो अलग से रूप धारण करना पड़ा। ये शरद कुमार आदि जो थे ना, जा रहे थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गए शंकर जी को देखा पार्वती के साथ, तो उनको लगा ये हमें क्या ज्ञान देंगे, स्वयं माया में पड़े हुए। विष्णु के पास गए, लक्ष्मी जी के साथ देखा, वहां भी उन्हें श्रद्धा नहीं हुई। ब्रह्मा जी का भी वही हाल, तो अंतिम में गए शंकर जी के पास, पहले विष्णु ब्रह्मा सबको देख लिया, तो शंकर जी को दया आ गई, उन्होंने सोचा ये पार्वती को जो मेरे साथ देखा नहीं इसलिए इनको श्रद्धा हो गई और ये ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। तब उन्होंने अकेला पार्वती को छोड़ करके अपना रूप धारण किया, वो नाम पड़ा दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति का अर्थ क्या होता है? दक्षिणा मतलब ज्ञान और मूर्ति मतलब स्वरूप। ज्ञान स्वरूप कब होता है? जब व्यक्ति मौन धारण कर लेता है। तो बुद्धिर मनीषा धीषणाधि प्रज्ञा सेम उसी मति। बुद्धि मनीषा धी ये सब एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। तो दक्षिणा का मतलब होता है सेमुसी, दक्षिणा सेमुसी प्रोक्ता। एक तो दक्षिणा का मतलब होता है दाया, एक दक्षिणा का मतलब होता है जो आप दक्षिणा देते हो लिफाफा आदि में। तो दक्षिणा मूर्ति का मतलब लोग समझते हैं कोई दक्षिणा नोट की मूर्ति होंगे, ऐसा नहीं समझ। आप लोगों को तो सब मालूम है, बाहर वाले कभी भ्रम में पड़ जाते हैं। हम लोग रोज पाठ करते हैं ना दक्षिणा मूर्ति नमः, ये लोग सोते दक्षिणा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्या ये? तो यदि वो ऐसा भ्रम में पड़ जाए उसको न मालूम हो तो बता देना भाई दक्षिणामूर्ति का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप। भगवान दक्षिणामूर्ति जब बैठते हैं बट भी तपस्मीपे भूमि भागे निसरणम। भगवान विष्णु को क्या है? अश्वत्थ वृक्ष प्रिय है। न क्रोधो दुम्बरो स्वत्थ चाणूरांध्रणी सूदन। न क्रोध किसको बोलते हैं? बरगद को। उदुम्बर का पेड़ एक अलग होता है। न क्रोधो दुम्बरो स्वत्थ और अश्वत्थ, पीपल वृक्ष में विष्णु का निवास माना गया और बरगद के पेड़ में कौन रहते हैं? भगवान शंकर। तो दक्षिणामूर्ति शंकर के अवतार है इसलिए वो बट बिटप समीपे बरगद के नीचे बैठ करके भूमि भागे निसरणम सकल मुनि जनानाम ज्ञान दातारम आराद आराद उपकाराद। ऐसा सहसा ज्ञान देते हैं। सनत कुमार आदि जब गए पूछते हैं तो भगवान ने कुछ भी उपदेश नहीं दिया। कैसा उपदेश दिया? मौन व्याख्या प्रकटित बपु, ऐसे करके गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। जब आप पूछते और हम कुछ बताते हैं फिर भी आपका संशय रह जाता है। जिस दिन आपको ज्ञान मिलना हो उस दिन समझना जिस महापुरुष के पास जाओगे वो कुछ बोलेंगे नहीं और उसी दिन आपका समाधान हो जाएगा। वो देख लेना, यहां तो हम लोग आते हैं वक्ता के रूप में, कई लोग हैं, सबके अलग अलग भावना बनती है कौन है क्या है, वो बड़े गुरुजी हैं ये छोटे गुरुजी हैं, ये सब भाव आ जाते हैं। लेकिन उस परमात्मा के प्रतिपादन करने में वह परमात्मा सबके लिए एक समान है, गुरु तत्व एक ही है, उसमें कभी भेद मत करना नहीं तो हम आत्मकल्याण से वंचित रह जाएंगे। कैलाश में थे हरिहर तीर्थ जी महाराज, एक महात्मा जी बता रहे थे उनके बारे में, कोई बंबई से आप जैसे भक्त गए महाराज जी के दर्शन करने, कोठारी ने कह दिया यहां कमरा नहीं है, बेचारा परेशान हो गया, गया होगा दो चार दिन रुकने के हिसाब से जाऊंगा रुकूंगा। महाराज जी के पास जाकर बोला महाराज जी मैं तो आया था बंबई से, बोले बड़ा अच्छा हुआ लेकिन वो यहां कमरा नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा किस लिए चाहिए कमरा? बोले रुकने के लिए। क्यों रुकोगे? आपके दर्शन के लिए। तो बोले मेरा दर्शन तो हो गया ना, अब जाओ अपने घर। ये है सहजता। अरे देखो मेरा दर्शन करने आया, कोठारी ने कमरा नहीं दिया, यहीं से राग द्वेष प्रारंभ होता है। महापुरुष जो होते हैं सहज भाव में उनके लिए कोठारी भी उतने प्रिय है जितने आप प्रिय हो, वो उनकी अपनी व्यवस्था है। आप कह रहे हो कि आप हम आपके दर्शन के लिए आए, तो दर्शन किसको बोलते? चार दिन रहने के बाद दर्शन होगा क्या? दर्शन हो गया तो हो गया, उसी समय हो जाता है। तो ये सब समझने की बात है। कहीं जाओ जब तक आप अपने जीवन में दूसरों की शिकायत करने की आदत डालोगे ना कभी ज्ञान होगा ही नहीं। चित्त अशुद्ध होता है, दूसरे के बारे में क्रिटिसाइज करना, वो ऐसा है वो ऐसा है, पढ़ रहे हो वेदांत सुन रहे हो दशश्लोकी, लेकिन हम लोग आदत से इतने मजबूर हैं जब तक दो बात किसी के बारे में न कर लें तब तक सवेरे का ब्रेकफास्ट भी हजम नहीं होता है। अब लंच के पचाने के लिए तो कितनी बातें करनी पड़ेगी। तो ये सब जो है गुरु के उपदेश देने का जो तरीका है मौन रह करके देते हैं। ये दक्षिणामूर्ति के अवतार तो चतुर्भी सह शिष्येस्तु शंकरो अवतरिष्यति। वे शंकर भगवान कृपा करते हुए संपूर्ण जीव मात्र के लिए आ कीट पतंग सब आ गए इसमें, हम लोगों के लिए तो है ही। सर्वान जीवान समुद्रधीर्ष भगवान श्री शंकर। अब यहां से विवेक जो प्रारंभ करना है, अनात्मभ्यो विवेकेन आत्मानम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम संक्षेपेण बोधयितुम दश श्लोकी प्रणिनाय। अनात्मभ्यो विवेकेन, अनात्मा से आत्मा का विवेक पूर्वक विवेचन करना है। आप अध्यास भाष्य पढ़े हो, अत्यंत तमह प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो हो इतरेतरा विवेकेन। ब्रह्मसूत्र की भाषा में बोलना है, इसको बोलते हैं भेदाग्रह निबंधन। क्या है ये? भेदाग्रह निबंधनो भ्रम। भ्रम का लक्षण जो किया, भेद का ग्रहण हो जाए तो ज्ञान हो गया। अभी भेद का क्या हो गया? अग्रहण है। आत्मा और अनात्मा अत्यंत अलग अलग है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? जो प्योर सोने की बात करते हो आप लोग, प्योर सोने से गहने बन सकते हैं क्या? क्या मिलाना पड़ता है? तामा या चांदी कुछ मिलाना पड़ेगा। अब वह जो परमात्मा है वो तो प्योर सोना है, उससे तो संसार भी नहीं बन सकता, कुछ होगा नहीं। जैसे सोने से आभूषण नहीं बन सकता प्योर सोने से, तो उसने क्या किया? हाँ, अनात्मा को मिला लिया। मिलाने वाले हम लोग हैं। ये ऐसा समझो ना, पहले सोना था फिर तामा मिलाया, अब फिर तामे को सोने से अलग करना है। ये वही प्रक्रिया है। जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार है बने हुए, हम लोगों को इतना ही मालूम है कि हम मनुष्य हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, बस ये मालूम है। अब यहां जो दिन रात एक किए हुए विवेक कर रहे हो किसके लिए? जिस आत्मा का अनात्मा के साथ तादात्म्य हो गया है उसको अलग करना, विवेक करना है। यही है वो अनात्मभ्यो विवेकेन आत्मानम। जो आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त स्वभाव है, संक्षेपेण बोधयितुम। बहुत सारे वेदांत शास्त्रों को पढ़ लिया, फिर भी अभी तक जो बात हमें सीखनी थी उसका पाला पड़ा नहीं। ब्रह्मसूत्र पढ़ लिए, गीता सब याद कर लिया। अब तो आपको हम चाहते, अभी बोल रहे थे तिजोरी वाला, बोले स्वामी जी बढ़िया है, 10 दिन में 10 श्लोक। कहने का मतलब है ये 10 श्लोक की व्याख्या तो भी चलती रहेगी और आप लोग रोज पाठ करोगे तो ऐसी चाबी अब आपको मिल जाए। हम ये नहीं बोलते कि वो ग्रंथ आप पढ़ते हो, वो भी पाला तो पड़ गया होगा आप लोगों को ना। गीता का स्वाध्याय चल रहा है कितने वर्ष हो गए, और बीच में जब महापुरुष आते हैं, कोई ब्रह्मसूत्र सुना रहे, कोई खंडन खंड खाद्य सुना रहे, कोई उपनिषद सुना रहे, यहां बोलते संक्षेपेण, उतने विस्तार में न जाकर के। कई बार जब हम 1 घंटा बोलते हैं ना तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता क्या कह गए, बात होती एक ही। आप लोग कथा रोज सुनते हो तो फिल्म देखने वाला, फिल्म जब शुरू होती है ना तो मालूम पड़ जाता है कि ये हीरो तो अभी मरेगा नहीं, ये तो अंतिम में जाके मरेगा और सब मरते रहेंगे। वो एक को भी ऐसे भी हाथ कर देता है तो मर जाते, और उसको कितनी भी गोली लगती फिर भी नहीं मरता है। यदि वो शुरू में मर जाए तो 3 घंटे की फिल्म चलेगी कैसे? तो करना तो है, आत्मा का ही प्रतिपादन है, लेकिन जब तक उसमें दृष्टांत न हो, मिर्च मसाला न हो, एक घंटा हम ब्रह्म ब्रह्म करेंगे तो यहां ब्रह्म को जपने के लिए थोड़े बैठे हो, उसकी जो प्रक्रिया है उसी की तरह उसका प्रतिपादन होगा। अब जो वह आत्मा जिसको हम नित्य भी बोलते हैं, शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव, ये सब थोड़ा न्याय रत्नावलीकार उसके जो स्वरूप है उसका प्रतिपादन करेंगे। ये सब थोड़ा याद रख लेना, रोज बोलते हो सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है परमात्मा, लेकिन वो नित्यता शुद्धता बुद्धता है क्या, ये थोड़ा टीकाकार सुस्पष्टीकरण करेंगे और बाकी बातें भी फिर करते हैं कल। हरिओम।